मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ। बाबा के मुरली रागन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा के मुरली रागन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, दिल के आंगन में प्यार बरसाए, प्यार बरसाए, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।
ओम शांति। शास्त्रों में राजा ययाति की कथा है। राजा ययाति पांडव कौरवों के पूर्वज अत्यंत विलासी उनके लिए कहा गया है। जब उनकी मृत्यु का समय आता है, मृत्यु के दूत आते हैं उन्हें ले जाने, तो वो कहते हैं मैंने तो अभी पूरा जीवन जिया ही नहीं, मुझे और थोड़ा समय चाहिए, कम से कम 100 वर्ष। मृत्यु के देवता कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, और यदि तुम्हें जीवन चाहिए तो उसके बदले में जीवन देना पड़ेगा, तुम्हारी जगह पर किसी और को मरना होगा, उसके 100 पुत्र होते हैं, किसी की आयु 60, 70, 80 वर्ष, छोटा बेटा होता है उसकी आयु लगभग 20 वर्ष। तो अपने बेटों से पूछता है कि मेरी जगह पर कौन मरने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे अभी पूरा जीवन मैंने जिया नहीं, कोई तैयार नहीं होता, छोटा बेटा तैयार होता है। मृत्यु का देवता उस छोटे बेटे से पूछता है तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम तो बहुत छोटे हो। वो कहता है कि मेरे पिता की आयु इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो मैं ये कैसे मान लूं कि मैं भी बड़ा होने के बाद मेरी भी इच्छाएं पूरी होगी, इसलिए मुझे ले चलो। वो मृत्यु के दूत छोटे बेटे को ले जाते हैं और ययाति को 100 वर्ष और मिलते हैं। 100 वर्ष फिर पूरे होते हैं, फिर मृत्यु के दूत आते हैं। ययाति फिर कहता है कि अभी तक कुछ तो जिया ही नहीं, अब तो भोग पूरे ही नहीं हुए, अभी तो जीवन देखा ही नहीं, जीवेशना बनी हुई है। फिर कोई एक मृत्यु, तब तक और 100 पुत्र हो जाते, और एक पुत्र फिर जाने को तैयार होता है, और 100 वर्ष पूरे होते, फिर मृत्यु के दूत आते हैं। वो कहता है ना, अभी तो इच्छा पूरी नहीं हुई, जिया कहाँ अभी। ऐसा 10 बार होता है और फिर 10वीं बार फिर मृत्यु के दूत आते हैं ययाति को ले जाने। वो कहता है अब मैं तैयार हूं, क्या इच्छा पूरी हो गई? वो कहता है इच्छा है तो पूरी होती नहीं, परंतु मैं जीवन का एक अटल सत्य समझ गया हूं, क्योंकि इच्छाएं दोषपूर्ण है, वो उस घड़े की तरह है जिसमें 100 छेद है, वो उस भिक्षा पात्र की तरह है जिसकी कोई तलेटी नहीं, जो कभी भरता ही नहीं, जो कभी पूर्ण ही नहीं होता। इच्छाएं निरंतर अपूर्ण नहीं रहती है, वो समुद्र की उन लहरों की तरह है जो कभी रुकती ही नहीं, आती ही रहती है। चाहे संसार के सारे ही भोग क्यों न भोगे जाए, भोग खत्म हो जाएंगे परंतु इच्छा नष्ट नहीं होगी। इच्छा जवान होती जाती है, भोग बूढ़े होते जाते हैं। इन तृष्णाओं के स्वभाव को समझना है, कभी भी तृप्ति नहीं है उसमें। और भोग के बाद योग नहीं रोग है। शरीर जर्जर हो जाता है पर भोग कम नहीं होते। हमें लग रहा है हम भोगों को भोग रहे, परंतु वास्तव में भोग हमें भोग रहे। तेन तत्वेन भोगनिता, इस संसार के भोगों को उनको त्याग कर भोगो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। Enjoy the world by giving up the world. क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। ये ययाति बहुत प्रसिद्ध है इसी एक बात के लिए, वो प्रमाण है अतृप्ति का। प्योरिटी की ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूल्य है जिसकी आज हम स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अमृत वेला 3 प्रकार के बच्चे देखे। बाबा ने सेंटरों का चक्कर लगाया है, सेवा केंद्रों का। अमृत वेला 3 प्रकार के बच्चे, मुरली में 3 प्रकार के स्टूडेंट्स, दिनचर्या में तीन प्रकार के कर्मयोगी बच्चे। अमृत वेला तीन प्रकार में, पहले जो केवल लेते हैं बाप से लेते रहते, चार हो सकते इससे भी पहले मांगने वाले, जो केवल मांगते रहते फरियाद करते रहते, उससे भी पहले और एक हो सकते कंप्लेंट्स वाले, शिकायतें। तो सबसे पहले है लेने वाले, दूसरे है मिलन मनाते, रूहानी मिलन, भगवान से मिलन सुबह सुबह। आत्मा शरीर से बहुत सहज ऊपर जा सकती है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्त्वम् सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरीयम्। तुरीयावस्था, द फोर्थ स्टेज, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये अवस्थाएं बताई है कॉन्शियसनेस की। एक स्वप्न सोए है, एक जागृत, एक सुषुप्ति बीच की, और द फोर्थ जो योगी की अवस्था है जिसे कोई नाम ही नहीं है, इसीलिए उसे नाम दिया गया तुरिया। तुरिया अर्थात द फोर्थ। तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम, मैं ये भूतों का संग, ये पांच तत्वों का जो संग है, ये शरीर मैं नहीं। मैं कौन हूं? वह चेतन, वह शुद्ध, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, शुद्ध बुद्ध मुक्त। तो कोई कोई है वो क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह मिलन मना रहे हैं भगवान से, और तीसरे जो है वो बाप समान बन रहे हैं और कमाई कर रहे हैं इनकम। एक तो अमृत वेला इनकम है, एक पढ़ाई में इनकम है, और फिर सारे दिन में सेवा में इनकम है, ट्रिपल इनकम। कमाऊ पूत, और उसके विरोध में गवाऊ। मुसीबत उसे। तो अमृत वेले ये तीन बच्चे देखे, कुछ जो लेने में बिजी थे, कुछ केवल मिलन मना रहे थे, ये भी बहुत अच्छी अवस्था है। किसी भी कारण से कोई भी यदि भगवान के पास आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाएगा, चाहे किसी भी कारण से आ जाए, दुश्मनी के भाव से ही क्यों ना आ जाए, भिखारी बनकर ही क्यों ना आ जाए, याचक बनकर ही क्यों ना आ जाए, किसी भी भाव से, किसी भी कारण से, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में जो भी भगवान के पास आएगा कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, क्योंकि वो दाता है, वो देने वाला है, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा, कुछ ना कुछ तो उसे मिलेगा जरूर। तो कोई लेने वाले हैं, लेने की चाह है तो उन्हें मिल जाएगा, मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इस यज्ञ की विशेषता क्या है? जिसको जो चाहिए वो प्राप्त होता है। किसको फेमस होने की इच्छा है वो भी हो जाएगा, किसको फेमस ना होने की इच्छा है वो भी हो जाएगा, किसको गुप्त रहने की इच्छा है वो भी होगा। जिसकी जो इच्छा है, जिसे महान तपस्वी बनने की इच्छा है वो बनेगा, जिसे महान भोगी बनने की इच्छा है उसके लिए भोग सामग्री अथाह है। यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक खाते रहो फिर भी कमी नहीं आएगी, इतना है। अक्षय अन्नपूर्णा है ये यज्ञ। क्या है? अक्षय अन्नपूर्णा, अखूट। जिसे जो चाहिए वो मिलेगा, केवल इच्छा उत्पन्न करो, केवल संकल्प, परंतु तुम अपने कर्मों के खूब खुद जिम्मेदार हो, यह भी मत भूलना। तो ये अमृत वेले का दृश्य, बाबा ने आज सैर की है अमृत वेला। दूसरा दृश्य मुरली में, गॉडली स्टूडेंट भी तीन प्रकार के मिले। एक तो वो जो थे सुन सुन कर खुश होने वाले, आहा आहा आहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मुरली है, बहुत अच्छा क्लास है, बहुत पावरफुल क्लास है, इस क्लास को क्या करना चाहिए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करने वाले बच्चे, वो उसमें बहुत बिजी है, उनको लगता है ये उसने सुनना चाहिए, ये उसने सुनना चाहिए, इधर उधर सब जगह भेजते हैं, ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप में भेजेंगे, सब जगह। नीचे वेरी पावरफुल क्लास। तो पहले बच्चे कौन से, सुन सुन कर खुश होने वाले, और वर्तमान समय ब्रैकेट में फॉरवर्ड करने वाले। और जिसको फॉरवर्ड होता है वो क्या करता है, फॉरवर्ड, और जिसको वो फॉरवर्ड करता है वो क्या होता है, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। होमवर्क की भी चोरी हो रही है ग्रुप्स में, होमवर्क की भी चोरी, किसी और का होमवर्क नाम मिटा के अपना नाम डाल के पोस्ट, होमवर्क चोर। हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट। तो वो ज्ञान की पॉइंट, वो क्लास, वो मुरली, वो कमेंट्री, अनाथ होकर घूमती रहती है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उसको धारण करने वाला कोई भी नहीं। सारे कौन है, भेजने वाले, सारे कौन है, दूसरों का कल्याण करने वाले। उसके बाद में दूसरे प्रकार के स्टूडेंट्स कौन है, जो समाते हैं, सुनते भी है और भीतर भीतर समाते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, कोई पॉइंट उनको टच हो जाती है, कोई पॉइंट बहुत अच्छी लगती है, कोई पॉइंट उनको लगती है ये मेरे लिए, केवल ऊपर ऊपर का दिखावा करने वाले नहीं, धारण करने वाले। स्वामी विवेकानंद ने अपने लिटरेचर में, व्याख्यानों में एक वर्णन किया, एक भोले बाबा का, वो कहते मैं एक भोले बाबा से मिला, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, प्लेग आया था, लोग मर रहे थे, वो कहते सब अनित्य है, जो मर रहे मरने दो, कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, सब अनित्य है, मरने वाला कौन, मारने वाला कौन। अगर कोई किसी अमीर किसी गरीब को पीट रहा है तो वो कहते थे कौन किसको पीट रहा है, सब ब्रह्म ही है, मारने वाला भी ब्रह्म, पीटने वाला भी ब्रह्म। पर खुद जब वो भिक्षा लेने जाते थे और उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी तब वो गालियों की बौछार करते थे, जो नहीं देते थे उनको खरी खोटी सुना के आ जाते थे, तब उनका ब्रह्म ज्ञान खत्म हो जाता था, बाकी दूसरों को सुनाने के लिए उनके पास बहुत ब्रह्म ज्ञान था। बाकी वो भोले बाबा थे, एक होंगे कहीं किसी गांव में सन्यासी। तो दूसरे प्रकार के बच्चे समाने वाले, और तीसरे जो थे वो कौन थे, नॉलेजफुल, वो दूसरों को आप समान बनाने वाले थे, ये हायर स्टेज है, ये तीसरे प्रकार के बच्चे। तो पहले केवल सुनने वाले, दूसरे समाने वाले, तीसरे समान बनाने वाले, खुद नॉलेजफुल होकर दूसरों को भी समान बनाने वाले। केवल सुनने वाले नहीं, केवल पढ़ने वाले नहीं, केवल पढ़ा पढ़ाया वाला सुनाने वाले नहीं, सुना सुना समझने वाले, धारण करने वाले, गहराई में जाने वाले। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, और ऊपर ऊपर से टेस्ट देने वाले नहीं, गहराई से। इसलिए आज की मुरली जरा अच्छे से पढ़ना गहराई से, क्योंकि आज की जो टेस्ट है ये एकदम अलग है। आज की टेस्ट रोज वाली नहीं है, यस नो यस नो। एक दिन यस यस यस, दूसरे दिन नो नो नो, एक दिन हाँ हाँ हाँ, एक दिन ना 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 ना। तो आज ना हाँ वाली है ना ना वाली है, आज कुछ और ही है। इसलिए कहा आज का थोड़ा ध्यान से पढ़ना शब्द शब्द। तीसरे प्रकार के बच्चे कर्मयोगी वाले बच्चे, उसमें तीन प्रकार, एक कमल फूल, दूसरे गुलाब और तीसरे वैरायटी फूल। तो ये तीन प्रकार के फूल वाले बच्चे। सबसे पहले कमल, कमल वाले अर्थात न्यारे प्यारे रहते, डिटैच रहते, लविंग एंड डिटैच्ड, अटैच नहीं होते। विकारी वायुमंडल में रहते हैं, परंतु वो विकारी वायुमंडल उन्हें स्पर्श नहीं करता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, जैसे कमल पानी में रहता है, परंतु उसके पत्तों को वो पानी, वो कीचड़, वो जल स्पर्श नहीं करता। ऐसी अस्पर्श की अवस्था, अनटच्ड, डिटैच्ड। कर्म और कर्म के प्रभाव दोनों ही उन्हें टच नहीं करते। कर्म किया बुरा हुआ, उसका प्रभाव अच्छा बुरा, पास फेल, सफलता असफलता, निंदा स्तुति जो भी है, उससे अटैच, डिटैच्ड। ये है कमल फूल वाले बच्चे कर्म योग में। दूसरे हैं जिनमें रूहानियत भरी हुई है, हर कर्म में रूहानियत है, रूहानियत फैलाने वाले, रूहानियत की खुशबू बिखेरने वाले। कर्म बहुत साधारण है, ऐसे नहीं कि असाधारण स्किल्स है इनमें, बहुत सारी स्किल्स। दादियों में कौन सी स्किल्स थी? दादी जान की तीसरी पढ़ी हुई थी बस, ना हिंदी ना सिंधी। नहीं, दादी कहती है ना, मुझे ना हिंदी ढंग से आती थी ना सिंधी ढंग से आती थी, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं, अनपढ़। ऐसी महिला विदेश जाती है और विदेश की सेवाओं का विस्तार करती है। तो ये वो बच्चे हैं जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं है, स्किल्स नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, परंतु रूहानियत है, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्यूरिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। इसलिए उनके साधारण शब्द, हल्के फुल्के शब्द भी आत्माओं को प्रभावित करते हैं। तो ये रूहानी गुलाब। तीसरी जो ग्रुप है बच्चों का वो है वैरायटी पुष्प। इसमें दो प्रकार, एक सूर्यमुखी जो बाप के सामने जब रहते हैं तब खिले हुए रहते हैं, अन्यथा मुरझा जाते हैं, कलिया बन जाते हैं। जब तक मधुबन में है तब तक सब ठीक, तीव्र पुरुषार्थ। जब तक सेंटर में रहते तब तक तीव्र पुरुषार्थ है, जैसे ही घर में गए खलास। तो इस कर्म योगी में जो थर्ड वैरायटी है वो है, पहली वैरायटी उसमें भी सूर्यमुखी। जब तक सूर्य के सम्मुख है तब तक बहुत अच्छी अवस्था है, जैसे ही दूर चले गए मुरझा जाते हैं, कलिया बन जाते हैं। जैसे कोई कोई बिल्ली होती ना, दिन भर कितनी धार्मिक होती है, रात में अधार्मिक बन जाती है, मांसाहारी बन जाती है, दिन में वेजिटेरियन, रात में नॉन वेजिटेरियन, दिन में पूजा पाठ शास्त्र पढ़ेंगे, रात में चूहों का शिकार। दूसरी वैरायटी है इसमें रंग रंग बिरंगी फूल, उनका रंग और रूप बदलते रहता है, कभी कुछ रंग कभी कुछ रंग, रंग रूप बदलने वाले। तो ये ऐसा कितने हो गए, ये 9 वेराइटीज है। अमृत वेला 3, फिर गॉडली स्टूडेंट लाइफ के 3, और कर्म योग के 3। और इसके बाद की जो मुरली है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत या फिर बहुत बहुत। ये एक भाग है मुरली का जो पूरा हुआ। और यहां पर भी बाबा ने इसमें परसेंटेज भी दिए हैं, ये कितने हैं 25, ये 10% कम बोला इसको, ये 10, ये तो कम, बहुत कम है ये। मेजॉरिटी रंग रूप। और फिर रूहानी दृष्टि और वृत्ति का अभ्यास, बाबा ने कहा ये बहुत कम है। इसकी तो एक एक लाइन इतनी पावरफुल है, इसको ऐसे के ऐसे पढ़ना पड़ेगा। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी के लिस्ट में आ जाते हैं। गीता में 3 द्वार बताए हैं, काम क्रोध और लोभ, ये 3 क्या है, नरक के द्वार। उसमें से इस मुरली में चर्चा है काम की। इस चमड़ी को देखना, विकारी भावना पैदा करना, ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना को गिना जाएगा। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले, बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र से 1 सेकंड के लिए भी अगर नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते, दिव्य बुद्धि का या दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार व व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आहार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हैं अर्थात संकल्प के वशभूत हो जाते हैं, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे। मलेच्छ अर्थात मलेच्छ किसको कहा जाता है, जो शूद्र होते हैं, मलेच्छ जो शूद्र है, आउटकास्ट, छोटी जाति के, शूद्र जाति के, अगर उनकी परछाई भी पड़ गई तो ब्राह्मण जाके नहाते थे, वो जहां चलते थे पीछे एक झाड़ू रहता था लटका हुआ ताकि चलते चलते उनके पैरों के निशान भी मिट जाए, मोर पंख। हीन हेय दृष्टि से जिनको देखा जाता था, ऐसे शूद्र निकृष्ट म्लेच्छ तो ऐसे जो अशुद्ध आहार खाते हैं, कौन सा आहार, अशुद्ध संकल्प का आहार, उन्हें दूसरा और नाम दिया है अर्थात महापापी। महापापी आत्मघाती, आत्मघाती, महापापी और मलेच्छ, ये 3 नाम दिए। इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। कौन सा आहार स्वीकार करो, केवल शुद्ध। और शुद्ध आहार कहाँ से मिलेगा, मुरली से। शुद्ध संकल्प कहाँ से आएंगे, ज्ञान से, अध्ययन से, स्टडी से। तो क्या सुना? वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी विकारी भावना रखने वाले महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। महापापी, मलेच्छ, आत्मघाती, ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप दाग इस विकारी भावना को गिना जाएगा। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले, बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नज़र द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। चमड़ी, स्किन, बॉडी, जिस्म, इसे केवल पहचानना है, पहचानते ही वो भाग जाता है। माया से मुक्त होने का साधन, मुक्ति का साधन क्या है? माया को पहचान लेना। बस पहचान लेते ही वो भाग जाता है। श्री रामकृष्ण एक कहानी सुनाते थे। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसके पास सामान था, उसने देखा कि एक छोटी जाति का व्यक्ति है, चमार है शायद या कोई और, बहुत छोटी जाति का, तो उसको वो कहते हैं मेरा सामान उठाओ और ले चलो। वो कहते हैं मैं कैसे ले चलूँ, मैं छोटी जातियों का, वो कहते कुछ नहीं होता है, मैं कुछ जात पात नहीं मानता, आ जाओ उठा के लेके चलो। वो डरते हुए लेके जाता है और किसी स्थान पर पहुंचते हैं, किसी घर में, तो घर का जो मालिक होता है वो आता है। ये उस समय की बातें हैं जब जात पात बहुत ज्यादा थी समाज में, तो वो जो नौकर, जो सामान लेके आने वाला व्यक्ति है, वो एक कोने में जाके चुपचाप बैठ जाता है। तो मालिक आता है, उसको तो पता नहीं है कौन है, तो ये दोनों बैठते हैं, तो मालिक उसको भी कहते हैं आओ तुम भी आओ बैठो हमारे साथ। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। वो कुछ बोलता नहीं, चुप ही रहता है। वो फिर भी कहते हैं आओ आओ बैठो, और फिर वो मालिक कह देता है कि तुम छोटी जाति के तो नहीं हो, शूद्र तो नहीं हो। जैसे वो कहता है वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है, कहानी खत्म। चोर को आइडेंटिफाई करते ही चोर भाग जाता है। यहां भी ऐसा ही, केवल आइडेंटिफाई करना, उसको केवल पहचानना, जानना कि ये है, ये भावना विकारी भावना है। जैसे ही हम पहचान लेते हैं फिर वो टिक नहीं पाती है, उजागर हो जाती है ना, फिर वो भाग जाती है और तुरंत फिर शुद्ध संकल्प आने लगेंगे। बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। कौन? दिव्य नेत्र के वरदान वाले, दिव्य बुद्धि वाले, दिव्य नेत्र वाले। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। कौन से संकल्प उत्पन्न करने हैं? शुद्ध कहां से मिलेंगे? मुरली से। मुरली को स्टडी करने से, उसमें से पॉइंट्स निकालो, नए नए पॉइंट्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स। है बात एक ही, आत्मा समझ बाप को याद कर, पर उसको समझाने के लिए इतनी हजारों मुरलियां है। तो आज का जो चिंतन का विषय है वो ये है, काम, विकार, इंद्रिय, सुख, ये भोग क्यों इतने पागल कर देते हैं? जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं। साकार मुरली। तो इसमें ये पॉइंट्स है कुछ, जिसकी 8 पॉइंट्स पहले ले चुके हैं। जो ययाति की कहानी सुनाई, 100 वर्ष 100 वर्ष 100 वर्ष 100 वर्ष, कितनी बार? 10 बार, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक बाप अपने बेटों के सामने गिड़गिड़ाए कि मेरी जगह तुम मरो, मुझे और इच्छा है, बाकी है मेरी। और बेटे देखो भी कैसे, बेटे तैयार है। उन्होंने जान लिया पिता क्या कहते, पिता की अवस्था देखकर ही सीख गए। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो खुद के अनुभव से सीखते हैं, दूसरे वो जो दूसरों के अनुभव से सीख जाते हैं, खुद अनुभव करने की आवश्यकता नहीं। दूसरों को मरता हुआ देखा है, दूसरों को डूबता हुआ देखा है। तीसरे वो जो जो दोनों से सीखते हैं, खुद के भी और दूसरों के भी। तो ये टोटल 21 पॉइंट्स है, उसमें से 8 हो चुकी है। ये जितने भी इंद्रिय सुख है उसमें दोष है। क्या क्या दोष है? अष्टबाहु ऑक्टोपस का पहला ये कौन सा था? अटैचमेंट। उससे क्या हो जाता है? अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है। एक बार भी उसको भोगा तो अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है। बी, बहुत दुख कम सुख। उसमें दुख कितना है? बहुत। और सुख कितना है? ढूंढना पड़ता है सुख तो मिलता है। सी फॉर क्रेविंग, क्या उत्पन्न करता है वो? क्रेविंग। बेटा अपने पिता से कहता है कि आप जो मुझे कहते हो शराब छोड़ो शराब छोड़ो, मैं शराब हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बेटा व्यसनी है, एडिक्ट है। वो कहता है कि पिताजी मैं शराब हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, आप एक बार इसको चक्कर देखो, बस चक्कर देखो, और उसके बाद में अगर आपने मुझे कहा तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। पिताजी चक्कर देखते हैं और बेटे से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम छोड़ो या ना छोड़ो ये अब तुम पर है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो जितने भी भोग है संसार में, इंद्रिय सुख, चाहे भोजन चाहे काम विकार या और कोई, उन सब में क्या है? क्रेविंग। एक बार खा लो तो दोबारा खाने की इच्छा होती है, खाऊं खाऊं। एक बार खा के वहां पूरा थोड़ी ना होता है किस्सा, और खाऊं। तो सभी इन सुखों में क्या है? क्रेविंग है। पहला बताया अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है उसमें, ये भोगों के दोष है, इनका चिंतन करना तो उनसे वैराग आएगा, नहीं तो कैसे वैराग आएगा? उसमें डूबे ही रहेंगे, खोए रहेंगे उसमें। दूसरा बताया उसमें बहुत ज्यादा दुख है, सुख कितना है? कम। तीसरा बहुत ही धोखेबाज है, कहते हैं थोड़ा सा है, थोड़ा सा थोड़ा सा, जगदीश भाई ने लिखा है थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगता है। थोड़ा सा ले लो बस, ज्यादा नहीं। डिसेप्टिव, धोखेबाज। तीसरा बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें, वो सब प्राप्ति के लिए। दुनिया में लोग ही जो इतनी मेहनत करते किस लिए? वो पेट के लिए। इतना पैसा कमाते हैं किस लिए? पेट के लिए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन भोगों के लिए। सबसे सस्ता वैराग है और महंगा भी। फिर फ्लिटिंग, फ्लिटिंग अर्थात क्षणभंगुर, अभी अभी है, अभी अभी खत्म। बहुत अच्छी चीज है, खाई ठीक है, खाने के बाद यहां अंदर जाने के बाद पता चलता है क्या कुछ क्या था? केवल टेस्ट, टिटिलेशन, सेंसेशंस, संवेदना है वो सुखद, उस सुखद संवेदनाओं के प्रति लगाव है बस। बाकी शरीर को क्या मिल रहा है उसका कोई लेना देना नहीं। अगला, हर भोग ज्ञान का दुश्मन है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाक्य है जो भोगों से वैराग्य दिलाएगा। ज्ञान का क्या है? दुश्मन। अगला, लत बन जाती है उसकी। एक तो बताया अटैचमेंट, और ये है उससे ऊपर की स्टेज, एडिक्शन। अगर वो नहीं मिला तो क्रेविंग होती है, भयंकर क्रेविंग, यहां तक कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। और जब भी पेशेंट किसी और चीज के लिए, जो जैसे रोज बीड़ी पीता है, सिगरेट जो भी करता है, और उसको हार्ट अटैक आ जाए, तो हार्ट अटैक तो आ जाता है, हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट चलती है 3 दिन, तीसरे दिन उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि 3 दिन से पिया नहीं है, 3 दिन से उसकी दवाई उसको मिली नहीं है, मेन दवा। पेशेंट कहता है मुझे छुट्टी चाहिए। तो अभी तक तो ठीक था सब, अभी रुको थोड़ा, ट्रीटमेंट चालू है। नहीं 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 मुझे छुट्टी चाहिए, अब भी छुट्टी चाहिए। कोई तो फिर किसी को मार भी देते हैं, दादी की तबीयत खराब है, ये मर गया, वो मर गया, अभी जाना है। पर कारण क्या होता है? मिसिंग, क्रेविंग, बेचैनी, तलब, विड्रॉल सिम्टम्स, ऐसे हाथ कंपन होने लगते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, चिल्लाता है पेशेंट, दो दो तीन तीन लोग बांध पकड़ के रखते हैं, एकदम भयंकर अवस्था हो जाती है, उसको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो यहां पर भी वैसा ही होता है, जो भोजन के साथ होता है वह काम विकार के साथ भी सेम होता है। इसलिए क्यों अत्याचार हुए, इस यज्ञ में इतने इतनी बाधाएं क्यों आई? व्यक्ति वायलेंट हो जाता है, मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका प्यार आत्मा से था ही नहीं, जिस्म से था। इंटेंस क्रेविंग उत्पन्न होती है। अगला, इनटॉलरेंस। ये 8 तो उस दिन बता चुके, एक दो क्लासेस में हो चुका है चर्चा, ये उसके आगे है। ये काम विकार अधैर्यता पैदा करता है, अधैर्य, अभी के अभी चाहिए, वेट नहीं कर सकते, अब भी तुरंत, इनटॉलरेंस, इंस्टेंट, 2 मिनट्स नूडल्स, इंस्टेंट, ये भी वैसा ही है, अधैर्य हो जाता है, इम्पेशेंस, व्यक्ति बेचैन हो जाता है इसमें, ये सभी भोग। अगला, जे खतरा, जेपर्डी, डेंजर है उसमें, भोग इतने सस्ते नहीं है, उसके साथ बहुत सारे खतरे हैं, बीमारियां हैं, दूसरे देख ले इसका डर है। अगला, गांठें बनती है, नॉट्स, नॉट्स अर्थात अंतर्मन में नई नई गांठें बनती है, नए संस्कार, गांठें अर्थात संस्कार, गांठें अर्थात नई नई ग्रंथियां अंदर बंधती है, नए नई, जो पहले नहीं थी अब बंध गई। यहां जीवन का लक्ष्य है आत्मा को मुक्त करना, ये भोग आत्मा को बांधते हैं, गांठे। अगला, अकेलापन अनुभव होता है बार बार, व्यक्ति को हमेशा चाहिए, वो जब नहीं मिलता है तो अकेलापन होता है, जबकि योगी तो वो है जिसे किसी की आवश्यकता नहीं, आराम से उसको कहा गया 4 दिन रहो एक कमरे में बंद, आराम से रह सकता है बिना मोबाइल के, ऑफलाइन। परंतु जहां डिपेंडेंसी है, जहां भोग है, जहां एडिक्शन है, वहां पर क्या उत्पन्न होता है? लोनलीनेस। अगला, मैलेडी अर्थात बीमारियां, इलनेस, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ये बीमारियां आ जाती है, ढेर सारी बीमारियां जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। फिर अगला, व्यक्ति निग्लिजेंट हो जाता है, अर्थात गैर जिम्मेदार। घर गृहस्थी, कितने सारे पेशेंट्स हमारे पास रोज इसके आते हैं, पूरा घर बर्बाद हो गया है। पति दिन रात पीते रहता है, उसकी पत्नी आती है, उसकी माँ आती है, उसके पिताजी आते हैं, सब समझाते हैं, परंतु वो किसी की नहीं सुनता। ये सब कमाते हैं, नौकरी कर करके, दूसरों के घर में खाना बनाती है माँ, पिताजी कुछ वो नक्की पर फोटोग्राफी दिन भर, पत्नी कहीं काम सफाई का काम करती है, और पति राज्य करते हैं, बस खर्च करते रहते हैं, पीते पी कर पड़े रहते हैं। एक तो है जिसको 2 बार रिहैब सेंटर में भेजा, 40,000 रुपये हर मास के, 3 मास रह के आया जोधपुर पुनर्वसन केंद्र, और आते ही उसी दिन से वापस चालू कर दिया। क्या करे अब वो पूरे 3 मास ना रिश्तेदार से मिलना है, ना मोबाइल यूज करना है, सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या, योगासन, एक्टिविटीज, प्रवचन, सब कुछ। पर जिस दिन आया उसी दिन से चालू, फिर से डाला, फिर से आया, और कई बार तो पूरा ही छोड़ देते हैं। फिर जीवन में कोई मुश्किल हो जाती है, कोई डिस्टरबेंस आता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए तो वो इधर से मिलती है और कहीं से नहीं मिलता। तो ये काम भी वैसा ही है। ये चमड़ी का सुख जो बाबा ने कहा है, दृष्टि वृत्ति विकारी हो जाती है भावना, ये म्लेच्छ महापापी आत्मघाती, ये क्रोध के लिए नहीं कहा है, ये काम के लिए क्यों कहा है? मुंह काला करना क्रोध के लिए कहा है क्या? जो क्रोध करता है उसका मुंह काला होता है, पीला होता है उसका, काला नहीं, लाल। काला काम के लिए कहा है, 5वीं मंजिल से गिरना काम के लिए कहा है, महापाप काम के लिए कहा है, महाठग खड़गुड़ टूटना काम के लिए कहा है। पतित, क्रोधी को पतित कहा जाता है क्या? क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता है, पतित किसे कहा जाता है? काम को। और बाप आए हैं पतित को पावन बनाने, क्रोधी को अक्रोधी निक्रोधी बनाने नहीं, वो बात का है। मेन उसका काम है पतित पावन। पतित किसे कहा जाता है? जो काम चिता पर बैठे हैं उनको, क्योंकि काम विकार में देहभान बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट, और सबसे स्थूल अवस्था है, सबसे लोएस्ट स्टेज है। उस स्टेज में ना विश्व कल्याण हो सकता है, उस स्टेज में समाज भी उसे निकृष्ट भाव से देखता है। अगर कोई क्रोध कर दे तो उसका इतनी चर्चा नहीं होती है, पर कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई साधु संत तक पता चल जाए ये सब है तो वो तो हेडलाइन बन जाती है। क्यों? क्योंकि समाज भी उसे बहुत हेय दृष्टि से देखता है। अगला है आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट अर्थात एकदम भावनाओं का, क्या कहते हैं उसको, दबी हुई भावना का उबाल आता है, आउटबर्स्ट होता है अचानक। व्यक्ति ठीक रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक जो दबा हुआ है वो एक दिन बाहर निकलता है, भावनाओं का संवेग, आउटबर्स्ट, उद्विग्न हो जाता है, तूफान उठता है, उद्वलित हो जाता है चित्त, बेचैन हो जाता है, एजिटेटेड, एजिटेशन, तो ऐसा बस्ट होता है उसमें। उसके बाद में काम विकार में डूबा हुआ व्यक्ति क्या करता है? पी फॉर प्लॉट, षड्यंत्र करता है, कैसे 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 स्कीम बनाता है, प्लॉट करता है, उस व्यक्ति को उसकी तारीफ करता है, उसके गुणों की तारीफ करता है, उसके सौंदर्य की तारीफ करता है, उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। लक्ष्य वो व्यक्ति नहीं है, लक्ष्य उसका शरीर है। प्यार तो था ही नहीं। तो 16 प्लॉट, 17 क्वांड्री, क्वांड्री अर्थात डिलेमा, डिलेमा अर्थात दुविधा की अवस्था, इधर या उधर, इधर या उधर, निरंतर ये द्वंद चलते रहता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसको कहते हैं टू बी नॉट टू बी। हैमलेट की, शेक्सपियर का जो हैमलेट है ना, अनिर्णय की अवस्था में, इधर या इधर, इधर या इधर, इधर या उधर। तो ये सारे भोग डिलेमा की अवस्था उत्पन्न करते हैं, डिलेमा अर्थात दुविधा, क्वांड्री जिसको कहते हैं। 18 रिग्रेट, रिग्रेट अर्थात पश्चाताप, नहीं करो तो बेचैनी और करो तो पश्चाताप। ये हर विकार, हर भोग का ये अटल सत्य है, वो क्या उत्पन्न करता है, बेचैनी। अगर नहीं जाओ उसमें तो बेचैनी और जाओ तो रिग्रेट, पश्चाताप। 18th, 19th, व्यक्ति क्या बन जाता है, स्वार्थी, वो दूसरों का नहीं सोचता है, फिर दूसरों की भावनाओं का नहीं सोचता, उसे केवल चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। टेम्पटेशंस, जीवन टेम्पटेशन से भरा रहता है, रेजिस्ट नहीं कर पाते, छोटे छोटे टेम्पटेशंस आते रहते हैं, एंड दे गिव इन। एंड लास्ट, ये क्या है, बहुत बहुत छीछी, बहुत बहुत गंदा। तो हमने क्या क्या देखा आज, अमृत वेला, तीन प्रकार के बच्चे, पहला लेने वाले, दूसरे अपने अंदर समाने वाले, समाने वाले मिलन मनाने वाले, और तीसरे कमाई करने वाले अर्थात बाप समान। तो अमृत वेला तीन प्रकार के बच्चे, बाबा को क्लासिफिकेशंस बहुत पसंद है। आज तीन प्रकार के बच्चे देखे, आज चार प्रकार के देखे, आज पांच प्रकार देखे, पांचवे प्रकार में और दो प्रकार के देखे। हाँ, सुनाने में इजी हो जाता है और लंबा खींच सकते दूसरे बच्चे मुरली के स्टूडेंट्स दो प्रकार के हैं, तीन प्रकार के, पहले स्टूडेंट केवल सुनते हैं आहा 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 और ब्रैकेट में फॉरवर्ड करते रहते हैं, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड क्लास, बाकी क्लास अनाथ, उसको सुनने और धारण करने वाला कोई नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं उसका। तो ये पहले बच्चे, दूसरे जो समाते हैं, ज्ञान सुनते सुनते ही भीतर समाने लगते हैं, समाने लगते हैं। तीसरे समान बनते हैं और दूसरों को भी समान बनाते हैं। तो ये तीन प्रकार के बच्चे मुरली में, स्टूडेंट्स में, और तीसरा कर्मयोगी में तीन प्रकार के, पहले कमल जो अनटच्ड रहते हैं, जिन्हें कर्म और कर्म का प्रभाव परिणाम टच नहीं करता, न्यारे रहते। दूसरे बच्चे रूहानी गुलाब, रूहानी गुलाब अर्थात जो रूहानियत से भरे, उनमें जरूरी है बहुत ज़्यादा स्किल्स है, पर जो भी है साधारण से कर्म है। बाबा को लोगों ने कैसा देखा, वो गेहूं साफ कर रहे, साधारण सा कर्म है। जगदीश भाई पहली बार बाबा से मिले तो बाबा क्या कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे, जमा कर रहे थे, वो रास्ता जो था। परंतु छोटे कर्मों में भी स्थिति कैसी है, बहुत ऊंची, चाहे हजारों लाखों लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं या वॉशरूम साफ कर रहे, स्थिति सेम। बिफोर एनलाइटनमेंट कहावत क्या है, चॉप वुड फेच वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप वुड फ्रेश फेच वाटर, अर्थात ज्ञान से पहले जो अवस्था थी क्या करते थे, लकड़ियां तोड़ते थे, पानी भरते थे, फिर वो व्यक्ति को महाज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, अब क्या कर रहा है, सेम, अभी भी पानी भर रहा है, अभी भी लकड़ियां काट रहा है, परंतु स्थिति कैसी है, अब बहुत ऊंची। कर्म वही है, कर्म में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं, ऊपर से तो सेम ही दिख रहा है, परंतु स्थिति अब ऊंची चली गई है, अब वो नहीं रही स्थिति। बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड फेच वाटर्स, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप वुड्स फेच वाटर, सेम। तो ये हमने तीन प्रकार के बच्चों में पहला बच्चा कमलपुष, कमलपुष अर्थात डिटैच्ड, दूसरा रूहानी गुलाब अर्थात रूहानियत से भरपूर, तीसरे तीसरे में दो वैरायटी थे, एक थे सूर्यमुखी, सूर्यमुखी अर्थात जब तक मधुबन में है बाबा के सामने तब तक ठीक, यहां से रेलवे स्टेशन पहुंचे आबू रोड, अभी बैठे भी नहीं है ट्रेन में, खत्म। मधुबन को क्या कहा जाता है? सतयुग, ज्ञान सरोवर, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, पर किसी ने कहा था त्रेता, शांतिवन, द्वापर, और उसके बाहर उधर से कलयुग स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सभी मधुबन की शाखाएं हैं। तो सूर्यमुखी बच्चे अर्थात जब तक यहां है तब तक सब तक ठीक, जैसे यहां से गए खलास, ये नहीं बनना। दूसरे बच्चे हैं रंग बिरंगे फूल, जिनके रंग रूप बदलते रहता है। तो ये था सारा क्लासिफिकेशन, और उसके बाद जो हमने देखा इसको, जो कि सबसे स्ट्रांग मुरली है, वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है तो इस चमड़ी को देखना, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले को महापापी, आत्मघाती, मलेच्छ कहा जाएगा। ऐसी स्ट्रांग मुरली केवल ये 70s में थी, 80s का दौर अलग था, 90s का दौर अलग था। अगर मुरलियों की हिस्ट्री देखो तो धीरे 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 बहुत हल्की हल्की होती गई फिर, पर जो 69 की सबसे स्ट्रांग है और फिर 70s की और फिर 80s की, छोटे छोटे ग्रुप बाबा से मिल रहे, तो इतनी स्ट्रांग स्ट्रांग बातें उसमें आई है। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना को गिना जाएगा। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले, बुद्धि में संकल्प द्वारा और दिव्य नेत्र में एक सेकेंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। ये जो टच है, ये बहुत इंटेंस सेंसेशन क्रिएट करता है। सारा खेल सेंसेशंस का है, ये विषय और ये इंद्रिय, विषय इंद्रियों से जैसे टकराते हैं एक संवेदना उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं सेंसेशन। और ये सेंसेशन कई बार बताया, एक है प्लेजेंट, एक है अनप्लेजेंट। प्लेजेंट जो है उसके प्रति आसक्ति हो जाती है बस, और जो अनप्लेजेंट है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। कोई सुई चुबाता है तो वापस हम अपने आप को बचाते, राग और द्वेष, राग और द्वेष, सारा खेल इन दो ही विकारों का है। वो पांच विकार है ही नहीं, उनके भी डेप्थ में अगर जाओ तो ये है, क्योंकि ये विकार का ये जो सेंसेशन है ये कहाँ स्टोर होता है? सबकॉन्शियस माइंड में। ये सबकॉन्शियस माइंड श्रीमद की भाषा नहीं जानता है, ये ऑर्डर्स नहीं समझता है, इसे भाषा कौन सी समझ में आती है? संवेदना की। इसके अंदर रिटेंशन रहता है उस भोग की, स्मृति की, फिर वो कितना भी ज्ञान आ जाए फिर भी डूब जाते हैं। और फिर ये सारी 21 बातें सुनाई, सेंशुअल हैप्पीनेस जो भी है उसके दोष है ये, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है, क्रेविंग, डिसेप्शन, ये सब 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 जो भी 21 पॉइंट्स यहाँ पे सुनाई। लास्ट में पांडवों से मिले हैं बाबा और उनको कहा हार्ड वर्किंग है, प्लानिंग इंटेलेक्ट है, न्यारे प्यारे हैं, लॉटरी, ये दो तीन बातें हैं। तो ये एक मुरली है। तो आज का होमवर्क नंबर 1, ये जो 21 पॉइंट्स बताए हैं ये डिफेक्ट्स है सेंशुअल हैप्पीनेस के। अगर इस संसार से वैराग दिलाना है स्वयं को तो बैठकर एकांत में और मौन में चिंतन करना पड़ेगा कि जो जीवन मैं जी रहा हूँ वो किस तरह का जीवन है। वैराग वाला है, त्याग वाला है, तप वाला है या भोग वाला है? किस टाइप का जीवन है? एक दूसरा, जो दूसरी मुरली है 20 तारीख वाली, इस मुरली का होमवर्क सबको करना है, डूज और डोंट्स। कौन सी मेथड? डूज और डोंट्स। दो कॉलम बनाने हैं, एक तरफ लिखना है डूज और दूसरी तरफ लिखना है डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहली स्टेप, मुरली को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। कौन सी मुरली? 20:9:75 की फर्स्ट रीडिंग। फिर उसमें से देखना क्या क्या करने को कहा है, वो किधर डालना? डूज में। और जो डोंट्स है उधर क्या डालना? जो नहीं करना। और एक चीज, जो चीज हमें नहीं करना है अपनी डायरी में उसको लिख के रखना, और नीचे क्या लिखना? ऊपर लिखना, बाबा ने मना किया है। क्या लिखेंगे? बाबा ने मना किया है, दैट्स इट। तो ये इतनी पॉइंट्स हमको बहुत हेल्प करेगी। तो आज केवल दो ही होमवर्क है। पहले तो वो तीन 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 प्रकार के बच्चे, अमृत वेला तीन, मुरली में तीन, तीन गॉडली स्टूडेंट, तीन कर्मयोगी। मन को ज्ञान में बिजी रखना है। अगर बिजी नहीं रखोगे तो मन कहाँ जाता है? नीचे। जैसे बॉल को फेंको तो वो कहाँ जाएगा? नीचे नीचे ही जाएगा, ऊपर आने का कोई चांस नहीं है उसको। इसके लिए माइंड वॉन्ट्स टू गो टू लोअर कॉन्शियसनेस, उसको धीरे धीरे ऊपर हायर कॉन्शियसनेस में स्थित करेंगे, और आधार है मुरली अध्ययन। तो पहला वो, फिर ये 21 पॉइंट्स, और दूसरी मुरली से डूज और डोंट्स। कॉलम बनाएंगे डूज, कॉलम बनाएंगे डोंट्स। तो मुरली में पढ़ते पढ़ते ही दिखाई देगा कि ये करना है ये नहीं करना है, ये जो नहीं करना है इधर डालना है। ठीक है, तो आज का ये होमवर्क है। तो आज हमारे बीच में हरीश भाई जी है। अभी अभी आपने जो गीत सुना और तीन दिन से जो सुन रहे हैं, भाई साहब की आवाज़ में वो गीत है, और इनकी आवाज में एक अजीब सी कशिश है। एक अजीब सा नशा है, एक अजीब सी उसमें खिंचाव है, जो कि आत्मा को बैठे बैठे ही क्या कर देता है? अशरीरी बना देता है। अनुभव के एक जगत में प्रवेश हो जाती है आत्मा। वो शब्द कई बार बहुत साधारण से है, परंतु महत्व उन शब्दों का भी कम, परंतु गाने वाले की चेतना का होता है। इसलिए जिस अवस्था में व्यक्ति गाता है या किताब लिखता है या बोलता है या कुछ कर्म करता है, उस स्थिति का ज्यादा महत्व है। तो आज मुझे लगता है ज्ञान सरोवर से आए हैं कैसे आए होंगे पता नहीं इस मौसम में। तो दो शब्द आपकी तरफ से।
ओम शांति। तो सचिन भाई जी की क्लास का अभी थोड़े दिन से ही मुझे नशा चढ़ा है भाई जी ने बोला कि कैसे आए होंगे पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कैसे आया मतलब लग रहा था कि नहीं पहुंच पाऊंगा, पर पता था कि पहुंचूंगा सो ये गाना मुझे आनंद भाई जी ने भेजा था, और मुझे तब पता नहीं था कि और भी भाइयों ने, सिस्टर्स ने गाया है। तो मुझे जैसे ही वो पढ़ा, मन के मधुबन में तुम चले आओ, सो बोला अच्छा सचिन भाई जी ने लिखा है। तो बोला मैं बस बैठा, और जैसे भाई जी ने बोला कि कई बार कर्तापन का भाव, जैसे कर्म हम कर रहे हैं, तो आप में से माताएं ज्यादा बैठी हुई जो खाना बनाती ना, जिस स्थिति में मैं उस स्थिति में गाना बनाता हूँ कि बाबा अच्छा बनवा दो ना वहाँ क्लास में भाई बहन सुने तो उनका बुद्धि का तार बाबा से जुड़ जाए। और भाई जी की क्लास में बहुत डिटेल में जो चीज़ें समझ में आती है, बाबा तो अब लाइव बैठ के संदली पे सुनाते नहीं है, तो ऐसी जो निमित इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनसे सुन के हमें वो नशा चढ़ जाता है, और वो नशा ही तो फिर नई दुनिया को लेके आएगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप ज्यादा सीनियर हैं। सो मैं 4 लाइन गा दूं है।
मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ।
तो मैंने स्टूडियो में जब ये गाया इतना लाइन, तो हमारे देवरंजन भाई हैं, और उन्होंने बोला कि भाई इसके आगे का मैं बनाऊं क्या, मतलब बनाओ, तो उन्होंने बनाया।
बाबा के मुरली रागिन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा के मुरली रागिन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, जीवन ये मेरा वरदान है, वरदान है, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ।
ओम शांति।
मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ। बाबा के मुरली रागिन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा के मुरली रागिन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, दिल के आंगन में प्यार बरसाए, प्यार बरसाए, मन के मधुबन में तुम चले आओ। के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।